ओम शांति। मैं अशरीरी आत्मा हूं। बाबा के पास हम आए हैं आध्यात्मिकता की शक्ति प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिकता अर्थात आध्यात्मिकता अर्थात जितनी आत्मिकता हमारे जीवन में बढ़ती जाती है उतनी आध्यात्मिकता की शक्ति बढ़ती जाती है। उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है उसमें स्पिरिट शब्द अंतर्निहित है, अर्थात स्वयं को जितना स्पिरिट आत्मा समझते हैं उतनी स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। लौकिक पढ़ाई में भी यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर ए बी सी डी सिखाते हैं, तो यहां अलौकिक पढ़ाई में भी ए बी ये अक्षर पढ़ाए जाते हैं। ये अर्थात स्वयं को आत्मा अनुभव करना, बी अर्थात बाबा को यथार्थ रीति से जानना। तो पहले अक्षर का अभ्यास करने के बाद ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा इतने वर्षों से हर मुरली में आत्मा का पाठ दोहराते हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि ये हमारा होमवर्क 84 जन्मों का है। 63 जन्मों का जो आत्मा में देह का भान कूट कूट के भरा पड़ा है उसको हमें हटाना है और 21 जन्मों के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, उसको हमें जुटाना है। अर्थात ये 84 जन्मों का होमवर्क है और हमारे पास बहुत थोड़ा समय बाकी है। आप अपने से पूछो कितना आत्मा अनुभव करने का अभ्यास हमें करना होगा। ब्रह्मा बाबा को भी जब आत्मा का परिचय मिला उसके बाद बाबा हजारों बार कागज पर लिखते थे मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। बाबा के घर में एक छोटा सा सत्संग चलता था, उसमें भी बाबा स्वयं को आत्मा अनुभव करते थे और जो भी सत्संग में आते थे उनको आत्मा ही देखने का अभ्यास करते थे। तो ये स्पष्ट करता है कि आत्मा का पाठ ये पहला पाठ है और अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। हम कहते हैं हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है, उसकी क्या निशानी है? निराकारी बाप से प्यार होने की निशानी है उनके जैसा निराकारी स्वरूप में टिकना और सबको निराकारी रूप में देखना। अगर ये अभ्यास हम नहीं करते हैं जितना करना चाहिए तो ये स्पष्ट है जितना प्यार हमारा बाबा से होना चाहिए उतना नहीं है। तो वैसे तो सतयुग त्रेता युग में हम सभी आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, लेकिन जैसे हम द्वापार में प्रवेश करते हैं माया हमें जोर सा थप्पड़ लगा देती है, हमारा मुंह फेर लेती है और हमें कहती है मेरे राज में तुम हो, मेरी ऑर्डर तुम्हें माननी होगी। क्या ऑर्डर है तुम्हारी? स्वयं को देह समझना होगा और सबको देह के रूप में देखना होगा। तो माया की ऑर्डर हम इतना मानने लगे तो नीचे हम गिरते गए। तो माया ने हमें उल्लू बना दिया। उल्लू पेड़ पर उल्टा स्वयं को टांगता है। तो है हम आत्मा, लेकिन समझने लगे देह तो हम उल्टे लटकने लगे। तो संगम युग में बाबा ने हमें उल्टे से सुल्टा बनाया। आत्मा की यथार्थ पहचान देकर आत्मा के भान में टिकाने का अभ्यास कराया। इसलिए ये बात जानना जरूरी है कि स्वयं को सहज रीति से आत्मा अनुभव कैसे करें, उसकी विधि क्या है। आत्मा को अनुभव करने के लिए सबसे पहले आत्मा को देखना होगा। आत्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा की आंख से ही आत्मा को देख सकते हैं। जैसे इन स्थूल आंखों से स्थूल शरीर आईने में देखते हैं, तो आत्मा की आंख से ही आत्मा को देखकर उसमें स्थित होने का अभ्यास हमें करना होगा। तो पहले हम कौरव संप्रदाय के थे, अंधे की औलाद, अंधे थे। माया ने हमारे तीसरे नेत्र में धूल झोंककर हमें अंधा बना दिया था, लेकिन बाबा ने हमें बहुत देख के गिफ्ट दी, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र प्रदान किया और हम पांडव संप्रदाय के बने। इतना ही नहीं, बाबा ने केवल तीसरा नेत्र ही हमें प्रदान नहीं किया, लेकिन बाबा हर रोज दूर देश से आकर मुरली के माध्यम से ज्ञान का अंजन तीसरे नेत्र में लगाते हैं, जिससे तीसरे नेत्र की रोशनी ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो आत्मा को अनुभव करने की विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर रुकुटे के बीच में बुद्धि रूपी नेत्र से हमें देखना है कि मैं एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि ये सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। आसमान के सितारे तो इन आंखों से देख सकते हैं, इसलिए अजीब सितारा हूँ। और गजब का सितारा क्यों हूँ? क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटता नहीं है, वो कभी घिसता नहीं है, इसलिए मैं गजब का सितारा हूँ। तो इसमें दो बातें हैं। दिन प्रतिदिन हमें देखने का परसेंटेज बढ़ाना है। मान लीजिए आप नए बच्चे हैं, तो 100% भान में से 10% भान आत्मा पर टिका हुआ है, तो अर्थात 90% आपको देह का भान गुप्त रीति से है। तो धीरे धीरे हमें देखने का परसेंटेज को बढ़ाना है। और दूसरी बात, उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे हम संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है केवल आत्म अभिमानी नहीं बनना है, लेकिन संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना है। संपूर्ण आत्म अभिमानी अर्थात 100% आत्मा का भान अनुभव करना और 0% देह का भान अनुभव करना, स्वयं को एकदम अशरीरी आत्मा अनुभव करते जाना। जब ये अभ्यास हम करने लगते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें 5 स्टेप्स की अनुभूति हमें होती है। जब आत्मा का अभ्यास हम करने लगते हैं, तो पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टिकना। माया हमें विस्मृति में लाती है और बाबा हमें स्मृति में टिकाते हैं। तो आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास हम बढ़ाते जाते हैं, तो दूसरी स्टेप आती है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता बढ़ते जाना। तो जैसे जैसे हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाते हैं, तो तीसरी स्टेज है आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाना। जो भी हमारे सामने आता है, उनके भ्रुकुटी में हमें आत्मा ही, चमकता हुआ सितारा ही नजर आता है। ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास इतना पक्का किया था, बाबा के दृष्टि को कहते थे एक्सरे विजन, अर्थात जो मस्तक के अंदर आत्मा छिपी हुई है वो बाबा स्पष्ट देखते थे। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो जैसे जैसे आत्मा की दृष्टि बढ़ती जाती है, तो चौथी स्टेज आती है आत्मिक वृत्ति अनुभव करना, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होना और सबको आत्मा देखने का अभ्यास पक्का होना, नेचुरल होना, आदत पक्की हो जाना, उसको कहते हैं आत्मिक वृत्ति पक्की होना। उसके बाद 5वीं स्टेप है आत्मिक कृति अनुभव करना। आत्मिक कृति अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता प्राप्त करना। महावीर बच्चे बाबा के वो होते हैं जो डबल काम करते हैं, स्थिति में भी स्थित रहते हैं और कर्म भी एक ही साथ करते हैं, उनको बाबा महावीर बच्चे कहते हैं। जब आत्मिक कृति का अभ्यास पक्का होता है, तो लास्ट स्टेज है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना। जो हम अपने साथ में लेके जाते हैं, जिसके आधार पर 21 जन्मों तक नेचुरल आत्मा का भान अनुभव होता जाता है। तो अभी हमें स्वयं से पूछना है कि कौन सी स्टेप पर मैं आत्मा खड़ी हूँ। अभी तक पहली ही स्टेप पर खड़ी हूँ आत्मिक स्मृति के, या दूसरी स्थिति के, या तीसरी दृष्टि के, तो ये हमें चेक करना है और इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं चमक रही हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनाई है, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, उसका गुह्य राज क्या है, आपको जवाब एक ही मिलेगा। कौन सा? बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत पक्का किया, घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के मैंने इस अभ्यास को पक्का किया, तब मैंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। हम ज्ञान में थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, ये आत्मा का व्यास पहला पार्ट इन नयों के लिए है, मैं तो पुराना बच्चा हूं। ये सूक्ष्म अहंकार हमें आत्मा के पार्ट पर अभ्यास करने नहीं देता है, जिस कारण हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी स्थिति लड़खड़ाती जाती है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद इस अभ्यास को हमें बहुत पक्का करना है। जानकी दादी जी जब पुणे में रहती थी, विदेश जाने के पहले, तो कारोबार करने के बाद अकेली बैठती थी, तो संतोष दीदी जी बॉम्बे की उनके साथ रहती थी। तो एक दिन संतोष दीदी जी ने दादी जी को पूछा, दादी जी आप अकेले में एकांत में बैठकर क्या अभ्यास करती हैं? तो दादी जी ने कहा था कि मैं स्वयं को कूटती हूँ, अर्थात आत्मा के अभ्यास को बहुत घोटती रहती हूँ। तो जो भी हमारी पुरानी दादियां हैं, उन्होंने इस अभ्यास को बहुत पक्का किया है, लेकिन इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो कोई कोई पुरुषार्थी इस अभ्यास को बोर अनुभव करते हैं, उसमें उनकी रुचि कम होती रहती है। उसका कारण क्या है? आत्मा का अभ्यास करने में रुचि कम क्यों होती है? हम छोटी सी भूल करते हैं। कौन सी? मैं आत्मा हूं ये मुझे पता है, लेकिन किस प्रकार की मैं आत्मा हूं ये हम भूल जाते हैं। अर्थात स्व और मान, ये दोनों चीजें जब साथ में होती हैं, समान में टिक कर आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो ये आत्मा का अभ्यास कभी भी बोर नहीं हो सकता है, बल्कि उसमें बहुत ही सुंदर गहन अनुभव हमें होते रहते हैं, ईश्वरीय नशे का अनुभव हमारा बढ़ता जाता है। अभी हम देखते हैं बाबा की पालना हमें मिल रही है, फिर भी कभी कभी ईश्वरीय नशा कम या गुम हो जाता है, इसका कारण क्या है? देखो दुनिया में जो बहुत अमीर बाप के कोई बच्चे होते हैं, उनको उनके अमीरी का नशा रहता है, पोजीशन का नशा रहता है, और उनके चेहरे पर वो झलकता है, उनके चलन और व्यवहार में वो दिखाई देता है। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता ने हमें एडॉप्ट किया है, उनके पालना में हम पल रहे हैं, न केवल पल रहे हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप हमें खजानों का वर्षा भी संगम युग में दे रहे हैं और सत्युग का राजय का वर्षा भी देते हैं, फिर भी हमें नशा नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्राप्तियों की हमें विस्मृति होती है, हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं, इसलिए हमारा चेहरा खाली नजर आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, बढ़िया सा उदाहरण आपको देता हूं। एक युवक 35 वर्ष का एक स्कूल में बहुत अच्छी तरह से टीचर का जॉब करता है, वो घर आता है स्कूटर से शाम के समय और अपना ड्रेस अलमारी में रखता है। उसका अपनी माँ से बहुत प्यार होता है और माँ का भी उससे बहुत प्यार होता है, तो माँ क्या करती है, रात को बच्चे को बिना बताए 2000 की 100 नोट की गड्डी बंडल उसके जेब में रख देता है। तो बच्चा जब उठता है सवेरे, जल्दी जल्दी में तैयार होता है, ड्रेस वो पहनता है और स्कूटी पर बैठकर चलता है। चार पांच किलोमीटर चलने के बाद उसको लगता है ये जेब भारी है, ये जेब में क्या है। जैसे जेब में हाथ डालता है तो ये 2 लाख का बंडल, जैसे वो देखता है चेहरा उसका बदल जाता है। अभी 4-5 किलोमीटर उसने स्कूटर चलाई, जेब में पैसा था लेकिन चेहरे पर नहीं था। जैसे उसको उसकी स्मृति आई चेहरा बदल गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत उपलब्धियां परमात्मा से हुई हैं, बहुत प्राप्तियां हो रही हैं, होती रहेगी, लेकिन उनकी विस्मृति होने से हमारे चेहरे पर वो संपन्नता दिखाई नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट निकालो और अपनी बुद्धि में सदा उसको रखो। देखते हैं राजकुमार की अपनी ड्रेस विशेष होती है और वो ड्रेस पहनकर अपनी राजधानी में चलता है तो उसके चेहरे पर विशेष नशा होता है। ऐसे हम ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संतान हैं, तो हम आत्माओं की ईश्वरीय ड्रेस कौन सी है? ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशे की ड्रेस पहनकर हम कर्म क्षेत्र पर जब जाते हैं तो हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक, आंखों में झलक और चेहरे पर फलक ऑटोमेटिक दिखाई देती हैं। तो ईश्वरीय नशे के साथ जब हम अशरीरी आत्मा का अभ्यास करते हैं तो हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जाती है। हम बाबा के बच्चों ने अशरीरी आत्मा का बहुत अभ्यास हर कल्प किया है, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में है। देवताओं के मंदिर में हमेशा दीपक जगाते हैं, जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने, होनहार देवताओं ने इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा की ज्योत दीपक जगाकर रखने का अभ्यास किया है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर में ये दीपक जगाते हैं। अगर दुनिया में कोई मकान पुराना होता है, उस मकान में लंबे समय से लाइट नहीं होती है तो वो मकान मकान नहीं रहता है लेकिन भूत बंगला बन जाता है। अब इस बंगले में भी 2500 वर्षों से लाइट नहीं है, आत्मा की लाइट बहुत डल थी। इसके कारण ये बंगला भी 5 भूतों का बंगला बन गया था। अब भूतेश्वर बाप ऊपर से देख रहे थे ये भूत आत्मा को परेशान करते रहे, दुखी और अशांत करते रहे। बाबा ने आकर इस घर में आत्मा की लाइट जगा दी, भूत भाग गए। इसलिए उनको क्या कहते हैं? भूतेश्वर। इसलिए हमेशा याद रखना है, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। जिसके घर में सदा रोशनी रहती है, आत्मा की लाइट रहती है, ऐसे बाबा के बच्चे ही बाबा का नाम रोशन करेंगे। अगर रोशनी नहीं है, आत्मा की लाइट नहीं जल रही है तो रो प्लस शनि अर्थात रुलाने वाला शनि हमारे पीछे लगा है, ऐसा ही हम कह सकते हैं। इसलिए ये मेरा घर है, इस घर में आत्मा की लाइट सदा जगती रहे, चलती रहे और अनेक आत्माओं को आध्यात्मिकता की लाइट प्रदान करती रहे, ऐसा अभ्यास हमें करना है तो धीरे धीरे आत्मा का आभा मंडल, आत्मा का जो प्रकाश है वो दिव्य और भव्य होता जाएगा। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर आत्मा का कमेंट्री के द्वारा अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मालिक प्रकृति के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं अशरीरी आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता का सुंदर तार मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा। कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं, स्वयं के बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूँ। उस आत्मा के जो सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। स्वयं भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। उसे अपने भाग्य पर नाज, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप है। बारे में वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, यहाँ पांच तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर, इन पांच तत्वों में समा रहा है, समा गया है। मैं केवल एक अशरीरी चमकता हुआ दिव्य सितारा, जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।